ॐ शांति माताओं का इतना बड़ा बड़ा झुंड देख करके देखो ना हम सबको कितनी खुशी हो रही है हा? देखा होगा ना दादी जानकी भी देखो जल्दी जल्दी यहाँ आ गई इतनी माताएं आई है इतना बड़ा झुंड है तो मैं दूर कैसे रह सकती हूँ इसलिए देखो रोज रोज दादी क्लास कराने आती है और विशेष आप लोगों के आकर्षण से आती है इसलिए कहती है मुझे रोज कराना है क्लास तो क्योंकि माताओं का क्या कहें तपस्या विशेष है परिवार में रहते घर गृहस्थ में रहते कोई चलता है कोई नहीं चलता है जब पूरा परिवार एक ही मार्ग पर चलता है तब तो उनों के लिए सहज है परंतु जब परिवार नहीं चलता है और उनमें भी कोई चलता है कोई नहीं चलता है और बड़ी बात जब साथी नहीं चलता है तब फिर उनके साथ साथ निभाना और फिर भगवान का बन करके रहना इसलिए बाबा भी कहते हैं गृहस्त व्यवहार में रहने वालों की कमाल है और ऐसी कमाल करने वाली माताएं इसलिए गाया गया है वंदे मातरम आप लोगों की कितनी महिमा की जाए लौकिक को भी निभाओ और परलौकिक में भी अपना पूरा अधिकार ले लो दोनों तरफ अपने अधिकार से चलते चले अपनी जीवन बाप की श्रीमत के अनुकूल चलाते रहें एक तरफ तो बाबा ने कितनी बुद्धि विशाल बना दी क्योंकि अज्ञान में चलने का तो अभ्यास है ही परंतु बाबा ने जो हमें इतनी ऊंची नॉलेज दे करके और हमारी बुद्धि को सतोप्रधान बनाया और सतोप्रधान बुद्धि भगवान की श्रीमत को जल्दी समझ पाएंगी श्रीमत के अनुकूल हमें कैसे चलना है और फिर कैसे निभाना है दोनों बातें श्रीमत के अनुकूल हमें अपनी जीवन बनानी है और ऐसी अलौकिक जीवन बनाते हुए फिर हमें लौकिक से भी निभाना है जरा इसमें कभी कभी अपने पास टग ऑफ वार भी होती है ना आज थोड़ी थोड़ी क्योंकि जब साथी नहीं मानता है नहीं चलता है अब उसको कहां तक राजी करें परंतु बाप की शक्ति ये अपने अंदर दृढ़ता पक्की रहे निश्चय बुद्धि विजयंती जितना हमको निश्चय दृढ़ रहेगा तो दृढ़ निश्चय हमारी अंदर के बुद्धि योग को बाबा से लगा के रखेगा जिस कारण हमारी बुद्धि शुद्ध रहे विशाल भी होंगी नॉलेज ऊंची नॉलेज के आधार पर बुद्धि विशाल हो गई और फिर विशालता के साथ साथ शुद्ध बुद्धि जो श्रीमत को यथारथ समझ करके अपने जीवन के कर्मों में उसके अनुकूल अपनी दिव्यता लाए जिसको कहा जाता है ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान। तो ऐसी जीवन बिताने वाली माताएं, इसलिए माता गुरु, माता मदालसा, कितने नाम माताओं को दिए हुए हैं। कन्याओं का पार्ट अपना और माताओं का पार्ट, क्योंकि दुनिया में तो दुनिया इसी से ही ग्रस्त परिवार प्रवृत्ति से ही चलती है, इसलिए प्रवृत्ति को पवित्र बनाना, प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी बन के रहना, बस इसलिए बाबा कहते हैं कमाल है इन प्रवृत्ति वालों की, जो ग्रस्त व्यवहार में व्यवहार भी करते हैं, अपनी ग्रस्ती यानी प्रवृत्ति भी संभालते हैं और फिर भी भगवान की श्रीमत के अनुकूल अपनी जीवन को पवित्र बना करके ग्रस्त धर्म को, ग्रस्त धर्म, ग्रस्त आश्रम बना लेते हैं। आश्रम के अंदर सदा भगवान के ही गुण गाते रहते हैं और हम कहेंगे हमारे इस आश्रम के अंदर सदा बाप के याद की तपस्या का वायुमंडल बना करके रखते हैं। तो अपने मन के अंदर बाप की याद और फिर उसी बाप के श्रीमत के अनुकूल हमारे कर्म और बोल, जिसको फिर हम ईश्वरी सेवा कहते हैं। तो आज आपके बीच में ऐसा विचार रहा, आप आए हैं, छोटे छोटे जो भी प्रश्न हो, परंतु कोई कोई ने प्रश्न बताए हैं, लिख कर दिए हैं, तो उनके नाम नहीं है, इसलिए कि कोई कोई के पर्सनल समस्या है। जनरल में तो अधिकतर यही कहेंगे, जितनी ज्ञान की धारणा, जितना अपने जीवन में परिवर्तन, जितना अपने जीवन के अंदर हम दैवी गुणों से व्यवहार करते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए सबको समझते हुए, सबका अपना अपना व्यवहार देखते हुए भी हमारे वृत्ति में फिर भी यह याद रहे हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक अपने बुद्धि के अनुसार अपना पार्ट बजाता है। यह जब बात बुद्धि में याद रहती है तो किसके भी पार्ट को देख करके हम विचलित नहीं होंगे, मूंझेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है ड्रामा में अनेक पार्टधारी है, सबका पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता है, और ऐसे भी नहीं जो मैं चाहूं वो ही सब करेंगे। जब ये बात बुद्धि में आ जाती है तो किसका कुछ भी नीचे ऊपर देखो तो यही याद रहेगा, हर एक का पार्ट अपना है। हाँ, उसके साथ हमें समझना है कि हमें अपना ज्ञान युक्त जीवन कैसे चलनी है, कहाँ हमें शांति से काम लेना है, कहाँ हमें मधुरता से, मधुर बोल से काम लेना है, और कहाँ कहाँ फिर उनका देखते अपनी मीठी दृष्टि से ही उस बात को सहन कर लेना है। ये सब गुणों का हमें समय पर समझ करके अपन को ही चलाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा उसमें मेहनत भी समझ में आती है और कहां कहां थोड़ा मुश्किल भी लग जाता है, क्योंकि इतनी अपनी ऊंची अवस्था बनी रहे जो जिस समय जैसी बात हमें याद रहनी चाहिए वो फौरन हमें स्मृति में आ जाए। इसके लिए थोड़ा अच्छी रीत से ध्यान से अपना अभ्यास पुरुषार्थ करना पड़ता है, और पुरुषार्थ के अंदर यह निश्चय पक्का भगवान हमें अभी मिला है, वो हमें अभी अपने साथ ले जाने के लिए हमें इतना शुद्ध और पवित्र बनाना चाहता है। जब ये हमें अंदर पक्का हो जाता है तब हमारे उनके प्रति दृष्टि वृत्ति ऐसी हो जाती है। अब थोड़े थोड़े प्रश्न जो आपने लिख करके दिए हैं, आप लोगों से भी जवाब पूछेंगे। थोड़ा ये अंतर है कि आप लोग का बैठना दूर है, फिर भी कोशिश करेंगे।
विशेष एक प्रश्न है,
देखो शुक्ला बहन भी आपके समान अनुभवी है, फिर भी ग्रस्त व्यवहार के अनुभवी नहीं है, परंतु फिर भी ऐसे नहीं, ऐसे तो रही, फिर भी कहा जाता है ना अनुभवी जीवन अच्छी महान मानी जाती है। हाँ बोलो।
योग में आंखें खुली रखें या बंद रखें, और साथ साथ योग अगर हम करते हैं तो एक ही संकल्प से एक ही समय पर करना ठीक है, या अगर समय में अंतर हो जाए तो चलता है या नहीं?
आया समझ में?
आया। ओम शांति। योग में आंखें बंद करके योग लगाना है या आंखें खोल करके? प्राण बाप दादा ने हम बच्चों को यही सिखाया है कि हम कर्म योगी हैं, तो कर्म में रहते हुए आंखें खोल के कर्म करते हैं। इसी तरह से बाबा हमारा माता पिता भाई बंधु सब कुछ है, तो हमें उनको आंखें खोल कर ही याद करना है। वैसे भी कहते हैं, भक्ति में भी कहते हैं, आंखें मीट कर समाधियां लगाओ पर आंखें खोल के दर्शन पाओ। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अलर्ट होकर के बैठें और बाबा से अच्छी रूह रुहान करें, उसके लिए आंखें खोल करके बैठना ही उचित है।
दूसरा प्रश्न है कि ग्रस्त में लव और लाह का बैलेंस कैसे रखें? ग्रस्त जीवन में लव और लाह
का
बैलेंस कैसे रखें?
वैसे तो बैलेंस हर एक चीज का अच्छा होता है, तो ग्रस्त में भी लव लाह का बैलेंस मैं तो समझती हूँ अच्छा है। कई बार तो बहुत लव में चले जाते हैं और फिर ऐसे लव में चले जाते हैं जो अपने नियम मर्यादाएं सब भूल जाते हैं, तो इसलिए लव और लाह दोनों का बैलेंस ठीक रख करके चलेंगे तो श्रेष्ठ आत्मा बन सकेंगे।
योग की गहराई।
परंतु लव के साथ ये तो हमें बात याद रखनी होगी, क्योंकि ये तो हर एक कहते हैं भाई प्यार के सिवाय पालना कैसे करेंगे, परंतु प्यार के साथ साथ जो मोह की रगत बन जाती है उस बात का अपने को ध्यान रखना है। प्यार से तो चलना और चलाना है, लेकिन मोह की जो रग है, कर्म बंधन की जो रग है, उस बात का ध्यान रखना है कि हमें स्नेह ईश्वरी भावनाओं संपन्न रखना है। भले पालना उनको लौकिक रीति से देनी है, परंतु पालना के अंदर जो हमारा स्नेह बना रहे उस स्नेह में अंतरक हमारी वृत्ति ईश्वरी भावनाओं संपन्न हो। अगर इस प्रकार हम स्नेह रखते हैं तो वो स्नेह डबल काम करेगा। इसलिए लव और ला तो ठीक है, परंतु लव के रीति में ये संभाल रखनी है कि हमें मोह की कर्म बंधन की रग न जाए और उसके अंदर हमारी ईश्वरी भावनाएं बनी रहे।
दूसरा प्रश्न,
मैं ऐसा समझती हूँ कि लव और ला का बैलेंस जरूर रखिए, पर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें ऐसे नहीं कि हम बहुत लाभफुल हैं, हर एक के लिए ला चलाएं, ऐसा नहीं हो सकता। पर हमारे अंदर ये भावना जरूर रहनी चाहिए, जैसे दादी जी ने बताया कि लव ला दोनों समान रखते हुए, क्योंकि माताओं में खास करके ये एक संस्कार होता है, जब प्यार में चली जाती हैं तो प्यार में नियम मर्यादाएं सब भूल जाती हैं, तो वो नहीं भूलना है। क्योंकि हमें इस समय बाबा ने हमारे सामने जो नियम मर्यादाएं बनाई है उनको सामने रखते हुए हमें थोड़ा इलास्टिक की तरह अपने जीवन को बनाना होगा और एडजस्टिंग पावर हमारे पास होनी चाहिए। परंतु जो हमारी नियम है, मर्यादाएं हैं, उनको अपने साथ साथ जरूर रखना है।
दूसरा प्रश्न है कि योग की गहराई, लंबाई और ऊंचाई क्या है? योग की गहराई, ऊंचाई और लंबाई क्या है? इसी से संबंधित और भी एक प्रश्न है कि योग में जब हम बैठते हैं तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अंतर क्या है?
अब मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि योग की लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या है। ये तो आप माताएं जिन्होंने प्रश्न लिखा है वो ही जान सकती है। परंतु वास्तव में योग की लंबाई, चौड़ाई और गहराई यही है कि हम दिल से बाबा के साथ सरस संबंध जोड़े और वहां से भी हमारे को रेस्पॉन्स जो आए, क्योंकि जहां संबंध है वहां प्राप्ति जरूर होती है। अगर हमारा जिगरी बाबा के साथ संबंध है और बाबा की तरफ से हमारे पास अगर रेस्पॉन्स नहीं आते हैं तो समझो लंबाई चौड़ाई तो नाम मात्र रह जाएंगी। परंतु अगर हम बाबा के साथ दिल से संबंध जोड़ते हैं, वात्सल्य प्रेम और सच्चे हृदय के उद्गारों से बाबा के साथ सच्चा संबंध जोड़ते हैं तो बाबा की तरफ से भी हम बच्चों को प्यार भरी दृष्टि भी मिलती है और संबंधों की वासना भी आती है। और मुक्ति, जीवन मुक्ति, अगर हम सही रूप से योग युक्त आत्मा है और अपनी आत्म समृद्धि में स्थित होकर के, अपनी श्रेष्ठ समृद्धियों में समृद्ध होकर के संसार में रहते हैं, विकारों से ऊपर उठ करके रहते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि हमें जीवन मुक्त स्थिति पानी है, तो जो जीवन मुक्त स्थिति होगी वो एक अपनी ही प्रकार की स्थिति होगी। जीवन में रहते हुए सब प्रकार की कमजोरियां, सब प्रकार की बुराइयां, सब प्रकार की वीकनेसेस सब खत्म हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि मैं जीवन, जैसे देवी देवताओं के लिए गाया है, जीवन में रहते हुए उन सब बातों से ऊपर उठी हुई आत्मा न्यारी और प्यारी होगी।
आज की मुरली को याद करो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। पहले मैं लंबाई की बात पर आती हूँ, तो हमारे योग की लंबाई बताओ कितनी है? बाप हमारा परम धाम में रहता है, अब आप बताओ परम धाम की लंबाई कितनी है? है माप उसका? है माप? बोलो है। तो कितनी लंबाई हो गई? इतना ऊंचे, एक तरफ तो ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचा उनका धाम। जब हमें बाप के साथ योग लगाना है तो हमें अपने बुद्धि योग को इतना ऊंचा, अर्थात इस मायावी नंगरी, इस देह और इस देह भान, देह के संबंध सबसे परे हो जाना है, इतनी ऊंचाई हमारे इस योग की है। जब हम ऊंचे ते ऊंचे परम धाम तक, वहां ही हमको बाप से मिलना है, और बुद्धि हमारी समझो वहां लग गई, तो यहां का सब कुछ भूल जाएगा। अब अपने आप को देखना है कि मेरी बुद्धि इतनी लंबी अर्थात इतनी ऊंची जाती है, और इतना ऊंचा जाने के लिए विशेष बात कौन सी, विशेष रूप से अपने को इतना हल्का अर्थात अपनी बुद्धि को इतना हल्का रखना होगा। हल्का माना जो कुछ और बातें हमारे बुद्धि में रहती है, हमें इस बात का अभ्यास रखना है, आज जिस समय जो बात आती है उसी बात को समझ करके जितना करना है कर ले, तो आगे पीछे उसका चिंतन न चले। जो हमारी बुद्धि को भारी कर देता है, जो हमारी बुद्धि को इतना दूर नहीं जाने दे सकता है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखते हुए बुद्धि को हल्का रखना है। इसलिए बाबा सहज विधि बताते हैं, बच्चे अपना सब कुछ बोझ मुझे बाप को दे दो, तो बाप को दे देने से बुद्धि हल्की हो जाएगी। बाप को कैसे देंगे, जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, हर बात के लिए, हर कर्म के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर एक्टर के लिए, हर एक्टर के पार्ट को समझने के लिए दी है ना सारी इतनी नॉलेज। है याद, है याद, बताओ है याद। तो इतनी विशाल बुद्धि बाबा ने दी है, इतनी विशालता से जिस समय जैसी बात आती है उसको श्रीमत के अनुकूल समझ करके हम उसमें अपना पाठ बजाएं, और हमारी बुद्धि उसमें बजा लिया तो फिर जास्ती संकल्पों की आवश्यकता नहीं। तब हमारी बुद्धि इतनी ऊंची, इतना लंबाई मना इतनी ऊंची, कहां तक, आकाश से भी परे परम धाम, इस शरीर से ही परे हो जाएंगे, इतनी तो इसकी लंबाई है। और मुक्ति, जीवन मुक्ति, आज के मुरली में बाबा ने क्या कहा, जीवन मुक्ति हमें तब मिलेंगी जब इस समय हम कर्म बंधनों से मुक्त रहेंगे। इस समय हमें हमारी मुक्ति अपने कर्म बंधनों के खाते से मुक्त, तब हमें इतनी लंबी जीवन मुक्ति 21 जन्मों तक हमें उसकी प्रालब्ध जीवन मुक्ति अर्थात दैवी जीवन प्राप्त होगी, जिस जीवन के अंदर कोई बंधन नहीं, सर्व बंधनों से मुक्त होगी। बाकी तो विस्तार से सुनते ही रहते हो।
दूसरा प्रश्न कि दुआएं कैसे दें और कैसे लें, कोई आत्मा किस भी प्रकार की है तो हम उसे कैसे दे सकते हैं, तो दुआओं का क्लास आपका होने वाला है, उसमें आपके जवाब आ जाएंगे। और कुछ पवित्रता से संबंधित प्रश्न हैं, तो संपूर्ण पवित्रता क्या है हमारी आदरणीय गुलजार दादी क्लास लेंगी, उसमें आपके जवाब आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए हमें भय रहता है, यदि हम सेवा में सफल करेंगे तो हमारा क्या होगा और बच्चों का क्या होगा, इसलिए हम सफल करते करते रुक जाते हैं, बाबा का प्यार नहीं मिलता है जितना हमें मिलना चाहिए।
जब हम श्रेष्ठ कर्म माने जो सफल करते हैं, तो सफल करने का अभिप्राय ये है जो हमारे पास है वो हम बाबा की सेवा में बीज रूप में डालते हैं, तो उसका फल तो हमें मिलना ही है, परंतु उसमें हमें ये जो संकल्प आता है कि पता नहीं जो कुछ हमारे पास है वो सफल कर देंगे तो हमारी बीमारी शिमारी में क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, तो इसमें ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल में, परंतु फिर भी आता है तो उसको आप इतने विवेकवान बनकर के रहिए कि ये तो जीवन के अंदर कुछ भी कभी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। तो उसके लिए मैं ऐसा समझती हूँ, कुछ रख करके फिर लगाओ तो ज्यादा निश्चिंत होकर के रहोगे। अब लगा भी दो और फिर साथ साथ संकल्प चलाते रहो तो वो तो इतना यथारत नहीं है। वो तो एक संकल्प आपको वास्तव में लगाने के बाद संकल्प चलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने किसी मनुष्य आत्मा की सेवा अर्थ नहीं लगाया। आपने जो कुछ भी अपना तन मन धन लगाया है वो ईश्वरीय सेवा में लगाया है, तो ईश्वर तो एक का हजार गुना देने वाला है, तो उसमें इस प्रकार के संकल्प चलना ठीक नहीं।
बाबा ने तो ये बड़ी सहज विधि बता दी है। बाबा के कहने का ये भाव नहीं है कि सब कुछ घर बार ले आओ मेरे पास और मेरे पास आके अर्पण करो, जो हम ऐसा सोचते हैं। बाबा तो कहते हैं ट्रस्टी होकर के रहो, हर कदम पे बाप से श्रीमत लेते रहो, अपना भेद बाप को बताओ और बाप से हर कदम के लिए श्रीमत लेते रहो। जब हम श्रीमत लेते रहेंगे तो बाबा ने तो बहुत क्लियर समझाया है। मैं समझती हूँ कल की या परसों की दो तीन दिन के मुरलियों में ये बात आई थी। अगर कोई बच्चा आकर के कहता है बाबा मैं मकान बनाऊं, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास संपत्ति है भले बनाओ। कहते हैं बाबा मैं मोटर लूं, बाबा कहते हैं बच्चे भले लो। बाबा ये नहीं कहता है कि संपत्ति हमको दे दो मैं क्या करूंगा, ये तो सेवा में जितना लगा सकते हो उतना लगाओ, परंतु निर्संकल्पता से। निर्संकल्पता का पहला मूल आधार निश्चय बुद्धि के साथ साथ जो बाबा की श्रीमत है, श्रीमत को यथार्थ रीति से समझना और यथार्थ समझ करके यथारत कदम उठाना। समझो कहाँ का हमें उमंग बहुत है और फिर मूंझते हैं, जैसे प्रश्न आया। तो अगर ऐसा मूंझ होती है तो बाबा कहते हैं आकर के पूछो, परंतु ऐसे भी बात का ध्यान रखो, क्योंकि कईयों ने ऐसा भी लिखा है कि देखो भले जो हमारे पास टीचर इंचार्ज है वो भी उससे पूछते हैं, उसकी भी श्रीमत कहेंगी, परंतु जब कोई बड़े रूप से हमें राय लेनी है तो बड़ों से पूछना, उसमें यथार्थ मार्गदर्शन हमें मिलेगा। क्योंकि हर एक अपने अपने अनुकूलता अनुसार, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी स्टेज बनाता है, इसलिए ऐसी ऐसी बातों में ट्रस्टी बन के रहना है। ऐसा अपना कुछ रूप है तो वो जब बड़ों से पूछेंगे, जैसे बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं मेरे से आकर के श्रीमत लो तो मैं तुमको यथारथ रीति से बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ मेरे पास ले आओ। इसलिए हमें अपने बुद्धि को भारी नहीं करना है। बाबा ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ट्रस्टी बन के रहो, अर्थात ममत्व नहीं रखो। बाकी सेवा में जितनी हम सेवा कर सकते हैं, जितना हम सेवा में लगाएंगे उतना अपने को खुशी भी होगी और आगे के लिए हमारा जमा भी होगा। जिसको बाबा कहते हैं बच्चे सफल करो और सफलता को पाते रहो, सफलता के शिखर पर आगे बढ़ते चलो।
दूसरा प्रश्न कि अंधेरे का डर लगता है, वो कैसे मिटाया जाए? अंधेरे में जाते हैं तो डर लगता है,
अंधेरे में जाते
हैं। हाँ, क्योंकि कोई भूत न पकड़ ले।
ये तो वास्तव में अपनी मानसिक वीकनेस है,
ये तो
बाकी कोई भूत प्रेत नहीं होता। वो तो ऐसा बताया जाता है कि माताएं अपने बच्चों को डराने के लिए, बच्चे थोड़ा काबू में रहे तो कहते हैं कि भाई रात के टाइम नहीं जाना, वहां भूत बैठा है। तो आप तो इतनी सारी समझदार पढ़ी लिखी माताएं हो, और आपको ही अगर अंधेरे में जाने में डर लगता है तो फिर आप दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे ले जाएंगे, ना? कैसे ले जाएंगे, मुझे समझ में नहीं आता। तो अंधेरा तो वास्तव में अपने मन का अंधेरा है, अपने अंदर की वीकनेसेस है जिसके कारण हमें डर लगता है। डर लगने की तो कोई बात नहीं है, और ना कोई इधर उधर कोई भूत प्रेत हमारे इर्द गिर्द कोई घूम रहे होते हैं।
बाकी संभाल से चलना वो तो आज की दुनिया में हर बात के अंदर हर समय पर संभाल से चलना है, जैसा समय वैसा देख के। ये तो डर रखना ये तो अपनी कमजोरी है, उसको तो अपनी शक्ति ज्ञान और योग की शक्ति से मिटाना है। बाकी अंधेरा अगर उसको हंसी की बात कहें, चलो भला अंधेरे में डर लगता है, जाके देखो क्या होता है, थोड़ा दिल को देखे तो सही क्या होता है। हंसी की बात है, जब हम लोग छोटेपन में कितने छोटे थे, यज्ञ में रहते थे, कराची की बात शुरू की, तब हमारे पास कोई भाई नहीं रहता था और हम सब छोटे छोटे रात को पहरा देते थे, वो भी हम ही बहने देती थी क्योंकि बहने ही थी। तो रात को तो अंधेरा होता है, अभी बहनों में कन्याओं माताओं में डर तो होता ही है। बाबा ने जो इतनी ऊंची नाले दी वो भी तो बुद्धि में है, उसको इस्तेमाल करना है। तो हम लोग क्या करते थे, जानबूझ करके इतना अंधेरा, बड़ा बड़ा हमारा मकान था, बंगला था, और उसमें बड़ा बड़ा बगीचा, अकेले अकेले जाएंगे, अच्छा देखते हैं क्या होता है, क्या करेगा, कौन कहेगा, मेरे सामने कोई आ सकता है, मैं तो आत्मा हूँ। अंदर में अपने आत्मा का अभ्यास और उसकी बात को याद करके, किसकी मैं संतान हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे आगे कौन खड़ा हो सकता है, ऐसे अपने को अंदर बहादुर करते करते चलते जाओ चलते जाओ चलते, अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो खाली संकल्प है। तो अपने संकल्प को ही समझ करके और संकल्प को खत्म कर लो, बात खत्म। ये बहनों माताओं में थोड़ा डर होता ही है, परंतु जितनी जितनी ज्ञान की प्रकाष्ठा रहेंगी तो ये सब निकल जाएगा। लेकिन साथ साथ हमको समय को भी देखना है, समय देख करके संभल के भी चलना है, सब बातों को पूरी रीति से जानकर और संभल के चलना है, दिल का डर नहीं रखना।
दादी दो तीन का एक जैसा ही प्रश्न है कि कोई बच्चे ज्ञान में चलते हैं,
अभी 5 मिनट में आपका क्लास पूरा करेंगे,
कोई बच्चे ज्ञान में चलते हैं फिर भी घर में क्रोध करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ज्ञान में नहीं चलते हैं क्रोध करते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए?
अभी उसके स्वभाव को आप क्या करेंगी, अपनी शांति की शक्ति, अपनी शांति की शुद्ध वृत्ति, और जब वो क्रोध करता है उस समय आप कितना भी कहो वो नहीं समझ सकेगा। उस समय तो हमें शांति से ही अपने प्रेम से शांत करके उसको शांत रखना है जितना भी वो करता है, फिर मौका देख करके समय देख करके उसको ये बात समझानी, तो हम उसमें कुछ सफलता पा सकते हैं।
लास्ट प्रश्न दादी, लास्ट प्रश्न है, बाप दादा की प्रवेशता जब दादी में होती है, बाप दादा की प्रवेशता जब दादी में होती है तो बाप दादा यहाँ नीचे आ जाते हैं, और यहाँ नीचे होते भी बाबा मुरली में ऐसा क्यों कहता कि भले मैं नीचे आता हूँ फिर भी तुम याद मुझे ऊपर परम धाम में करो, ऐसा क्यों कहता है? ऐसे समय पर हमारा मन बुद्धि तो ऊपर नहीं जाता है, यहीं रहता है।
आप देखेंगे जब बाप दादा नीचे आता है और वो दृष्टि देते हैं तो हम सब की क्या उस समय की मानसिक स्थिति होती है, हम सब की मानसिक स्थिति यही होती है कि हम बाबा से अच्छी प्रकार से दृष्टि ले। उस समय परम धाम नहीं याद आता, उस समय जो साकार में सामने हम बाप दादा को देखते हैं और बाप दादा से हर एक की इच्छा होती है उस समय कि भले मैं बहुत दूर बैठी हूँ पर एक बार बाबा आप मेरे को दृष्टि दो, सबकी ये इच्छा होती है ना। तो अब बाबा जब सामने है तो सामने याद करेंगे, वैसे जो विकर्म विनाश हो रहे हैं वो तो ऊपर वाले को याद करने से ही, अर्थात अपनी बुद्धि को ऊपर योग युक्त करने से ही हो सकते हैं, क्योंकि शक्ति जो उससे मिलती है। ये तो बाबा साकार में आए तो हम रू रूहान कर सकते हैं, अब एक फरिश्ते रूप का अनुभव कर सकते हैं, परंतु जो हमारे विकर्म है उसके लिए अलग प्रकार की पावर चाहिए, वो हम ऊपर वाले को याद करके कर सकती हूँ।
बाबा ने, मैं नहीं समझती हूँ, ये कहा है कि इधर होते आप परमधाम में याद करो, लेकिन इतना जरूर है हमें ये नॉलेज तो है ना, हम ये जानते हैं परम धाम निवासी बाप, तो परम धाम में उस समय हमें नहीं परम धाम में जाके याद करना है, परंतु बाप परम धाम निवासी है ये तो हमें ज्ञान है ना, समझ है ना। तो बुद्धि में ये जानकारी तो रहती है कि परम धाम निवासी अर्थात ऊंचे से ऊंचे स्थान से बाप आए हैं और हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप से मिल रहे हैं, तो हमारे पास बाप के ऊंचाई का नशा, बाप के रहने का स्थान भी इतना ऊंचा है जो दुनिया से परे आकाश से परे है, ये तो हमारे बुद्धि में सदा रहना चाहिए और रहता ही है। इसलिए कहा जाएगा ये जान करके, बाकी जब ऐसा बाप हमारे सामने है तो सामने ही मिलते रहेंगे, मिलते हुए यह नशा इतनी महानता हमारे बुद्धि में याद जरूर रहे, तब हम उसका इतना आनंद अच्छी रीत से ले सके।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादी जी एवं शुक्ला बहन का कि आपके प्रश्नों का बहुत सुंदर रीति से
जवाब दिया। ठीक है, जवाब आपको और कोई जवाब चाहिए तो पूछो प्रश्न।
दादी सवा दस बजे
बोलने बाकी, तो कुछ ऐसे प्रश्न है जो पर्सनल है वो जिन्होंने लिखा है वो आएंगे तो उनसे बात करेंगे।
दादी
अभी छोड़ो,
अच्छा
हाँ प्रश्न भले दे दो अपना,
हम बाद में जवाब बताएंगे,
पीछे पीछे ले लेते हैं अभी टाइम के अनुसार।
आप लोग चिट्ठी जो भी प्रश्नों की है वो बाद में हमें दे देना, फिर दोबारा ऐसा चांस देखेंगे या क्लासेस के द्वारा आपके जवाब मिल जाएंगे,
इधर बॉक्स रख देंगे उसमें डाल दे। ओके,
साथ साथ भोपाल जोन की माताएं ध्यान पर रहे कि कल आप सुबह 6:45 से 7 बजे तक रोटी डिपार्टमेंट में सेवा के लिए जाएंगे, इसके पश्चात 10 बजे इंदौर और छत्तीसगढ़ आज जाके राजस्थान जोन जाएंगे, 2 मिनट बाबा की याद में बैठ के फिर उठेंगे।